मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 20 मार्च 2018 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के डेली ऑडियो लेक्चर से आप महसूस कर रहे होंगे कि अभी थोड़ा से पैटर्न में हम लोगों ने बदलाव किया है और वह बदलाव इस तरीके का है कि एक किसी टॉपिक को लिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में आपसे बातचीत की जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहां बहुत साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं जिस टॉपिक को लेता हूं उसके बेसिक्स को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब आप यह न समझें कि मैं जिस टॉपिक पर भी बात कर रहा हूं उस पर मैं संपूर्णता के साथ बात कर रहा हूं, यानी कि मैं उसकी सारी चीजों को समेट कर आपके सामने रख रहा हूं और साथ ही कि मैं उसे करेंट से भी जोड़कर प्रस्तुत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना वक्त इसके लिए निर्धारित है उसमें सच पूछिए तो इतना सब कुछ बताया जाना संभव ही नहीं है। और यदि मैंने सारी चीजों को समेटने की कोशिश की तो मुझे मालूम है कि मैं उस टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो मैं करता हूं और कोशिश यह रहती है कि जो कर रहा हूं उसे पूरी तरह से और बेहतर तरीके से कर सकूं, तो मैं उसके छोटे से हिस्से को उठाता हूं और फिर उसे समझाने की कोशिश करता हूं। उसके ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करके आपके सामने स्पष्ट करने का मेरा प्रयास होता है, ताकि जो मूलभूत जानकारी है उस टॉपिक के बारे में आपको मिल जाए। आपने फ्रेंड्स ये भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं टॉपिक्स लेकर चल रहा हूं वो टॉपिक्स बड़े सरल किस्म के हैं, बड़े आसान किस्म के हैं। हो सकता है कि शुरू में टॉपिक सुनने के बाद आपको लग रहा हो कि यार इस पर क्या सुनना, लेकिन शायद सुनने के बाद आपकी यह धारणा थोड़ी बहुत बदल जाती हो कि नहीं ठीक ही हुआ, सुन लिए तो कुछ नई चीज पता लग गई। तो दोस्तों, अब उसी परंपरा को आप यूं कह लीजिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए भी मैंने बहुत ही नोन सब्जेक्ट को चुना है, जिसके बारे में आप लगातार सुनते भी रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बातचीत भी करते रहते हैं, और इस पर हो सकता है कि आपकी तैयारी भी अच्छी से हो, अच्छे तरीके से हो। और मित्रों, यह टॉपिक है जनहित याचिका, जिसे आप PIL के नाम से जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस पर मैं कुछ बातें आपसे आज करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं सच पूछिए तो इस टॉपिक को जो मैंने लेने का फैसला किया है, इसके पीछे मेरा एक अनुभव काम कर रहा है जो मेरी पिछले क्लास का अनुभव रहा है। आपको मालूम ही है कि मेरी 15 दिन की क्लासेस होती हैं, तो उस क्लास के दौरान जब बातचीत हो रही थी और जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के टॉपिक पर आए कि इसे कैसे तैयार किया जाना चाहिए, तो मैंने जब एक स्टूडेंट से पूछा तो उस स्टूडेंट ने बताया कि इस टॉपिक पर उसकी बहुत अच्छी तैयारी है। और मजेदार बात है कि वो स्टूडेंट लॉ का स्टूडेंट था। उसने बताया कि इस पर बहुत अच्छी मेरी तैयारी है। तो मैंने उससे कुछ प्रश्न किए। दोस्तों, आप शायद सुनकर ये विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने उसके शेड्स को लेकर बात करनी शुरू की तो मूलभूत जो चीजें हैं, देखिए सामान्य रूप में तो आपको मालूम है कि जनहित याचिका क्या है, लेकिन जब उसकी बारीकियों पर बात होनी शुरू हुई तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सच पूछे तो दुख भी हुआ कि वो उलझ चुका था। अब उसके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रास्ता नहीं दिखाई रह गया था और वो उत्तर नहीं दे पाया। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में स्पेशली यही होता है कि आपको लगता है कि मुझे मालूम है, प्रश्न जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया है, आपको लगता है कि इसका उत्तर भी मैं लिख सकता हूं, आप लिखने भी लगते हैं और लिखकर आ भी जाते हैं और आप अपनी तरफ से संतुष्ट भी होते हैं, लेकिन इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की गलतियां हो चुकी होती हैं कि उससे एग्जामिनर को यह साफ लग जाता है कि नहीं, बहुत अच्छी समझ आपकी नहीं है या आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए हैं, शेड्स को नहीं पकड़ पाए हैं, और बस वही मामला सारा का सारा दोस्तों गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने जानबूझकर अभी जबकि हम लोग एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम लोगों को यह अवसर मिला है, तो मैं ऐसे ही जानबूझकर टॉपिक्स चुन रहा हूं जो बहुत ही सामान्य रूप में दिखते हैं, दिखने में बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन जिन्हें विशिष्ट रूप से समझा जाना चाहिए उसकी जरूरत है। तो इसीलिए मैं दोस्तों पिछले अनुभव के आधार पर ही आप यूं कह लीजिए कि मैंने सोचा कि नहीं इस टॉपिक पर बात की जाए। आइए फ्रेंड्स, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो एक दो चीजें आपको बहुत बेसिक मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि जनहित याचिका जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख हम लोगों को अपने संविधान में नहीं मिलता है। हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, न्यायिक सहयोग देने का उल्लेख जरूर है, जिसके लिए विधिक प्राधिकरण वगैरह बनाए गए हैं, सरकारी वकील प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका उल्लेख हमारे संविधान में जरूर है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अपना केस नहीं लड़ सकता है, तो उसे सरकार को चाहिए कि उसकी मदद करे, उसका उल्लेख जरूर है। लेकिन जनहित याचिका तो उससे बिल्कुल भिन्न है। देखिए, सामान्यतः न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, या न्याय हम किसे कहते हैं? मेरे प्रति अन्याय हो रहा है, कोई मेरे प्रति अन्याय कर रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है, सरकार हो सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई संस्थान हो सकता है, यहां तक कि प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है। यदि मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं न्यायालय में जाऊंगा और न्याय की गुहार करूंगा। अभी तक न्यायालय इसी पैटर्न पर चल रहे थे, राइट? तो ये तो आप कह लीजिए कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। हालांकि ये भी PILE है, देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। तो ठीक है, तो आप जाइए कोर्ट कचहरी में, जाइए दायर कीजिए और केस लड़िए। लेकिन जो जनहित याचिका है, देखिए, इसमें जो शब्द है बहुत क्लियर है कि ये आपके अपने इंटरेस्ट में नहीं है, ये जन के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, दूसरों के इंटरेस्ट में है, या यूं कह लीजिए कि ये सार्वजनिक हित में है। तो जब सार्वजनिक हित में बात की जाती है, तो वो होती है जनहित। उसमें मेरा हित भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप पर्यावरण पर जा रहे हैं कि आपके शहर में भयानक रूप से प्रदूषण फैल रहा है, सड़कें ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, पानी बिल्कुल गंदा हो गया है, और फैक्ट्री से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, खूब आवाज भी आती है, साउंड पॉल्यूशन भी बहुत है, तो आपको लगता है कि इससे हमारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, उनके हेल्थ पर बहुत ही इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, तो आप जनहित याचिका ले जाएंगे। अब आप देखिए कि गए आप सार्वजनिक हित में है, लेकिन इसमें आपका भी हित शामिल है, क्योंकि आप पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा हित शामिल नहीं ही होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ मेरा हित नहीं होना चाहिए, उसमें पब्लिक का भी हित होना चाहिए। तो ये होता है, ये होती है जनहित याचिका, ठीक है। इसकी जो विशिष्टता है वो ये है, देखिए, सामान्य तौर पर अगर मेरी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ही केस का दायर करूंगा, कोई अनजान व्यक्ति मेरे बिहाफ पर दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो सार्वजनिक हित में है, तो कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, यहां तक कि वह व्यक्ति भी दायर कर सकता है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी मैंने प्रदूषण की बात कही, तो ठीक है, इस प्रदूषण से तो मैं प्रभावित हो रहा हूं, लेकिन मैं अगर किसी दूसरे शहर के प्रदूषण के बारे में दायर करता हूं, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, वहां के लोगों पर पड़ रहा है, तो मैं दायर कर सकता हूं। जबकि जो निजी हित है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो कोई दूसरे के बिहाफ पर भी, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, केस दायर कर सकता है। अब आप देखिए कि जब केस दायर किया जाता है, तो फिर अब वो ऐसा नहीं कि मैंने दायर कर दिया, मुझे तो लग रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही होगा, याचिका में दे सकता हूं, लेकिन वो स्वीकृत होगी या नहीं होगी, ये कोर्ट के ऊपर है कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं स्वीकार करता है। मैंने दायर कर दिया, यानी कि मैंने याचिका दे दी, याचना कर ली, अब वो कोर्ट अगर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उस पर केस, उस पर सुनवाई होगी और फैसले आएंगे, और अगर यदि वो चाहे तो रिजेक्ट भी कोर्ट कर सकती है। मित्रों, एक बात आपको और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं, वो केवल दो तरह के न्यायालयों में दायर की जा सकती है, केवल दो तरह के न्यायालयों में। एक है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिल जाता है, और वह किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 32, राइट? और इसके बाद जो दूसरा आता है, सेकेंड लेयर के जो हमारे हाई जो कोर्ट है, जिन्हें हम हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, जानबूझ करके मैंने यहां अनुच्छेद की चर्चा की है, और मैं यहां थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह अनुच्छेद आपको याद हो जानी चाहिए। देखिए, उत्तर लिखने का कमाल यही होता है हिमालय जनहित याचिका पर कोई पूछ ले, कोई प्रश्न पूछ लिया गया। हालांकि देखिए डायरेक्ट प्रश्न तो आते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट भी पूछ लिया गया, तो बड़े आप तरीके से यू कह लीजिए कि चालाकी के साथ अनुच्छेद का उल्लेख कर सकते हैं। जब आप अनुच्छेद का उल्लेख करते हैं तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर आप उल्लेख नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आप बहुत मिस कर रहे हैं या कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपको करना ही चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब आप उल्लेख कर देते हैं तो थोड़ा सा एग्जामिनर को देखिए, वो भी मनुष्य ही है, उसको ये तो आभास होता ही है कि नहीं स्टूडेंट जो है ना समझदार है और इसने थोड़ी सी अच्छी तैयारी की है, इस विषय को पढ़ा है, एकदम कॉमन सेंस से ये नहीं लिख रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि याद कर लीजिए। बहुत ही सामान्य सी बात है, जो उच्चतम न्यायालय के लिए वो संविधान का अनुच्छेद 32 है, और जो हाई कोर्ट है उनके लिए अनुच्छेद 226 है, 226 है। फ्रेंड्स, अब कुछ और बातें आपको देखिए मैं क्लियर कर दूं, ये क्यों आया। मजेदार बात यह है कि जो इसकी जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये दुनिया में इस तरह के जनहित याचिकाओं के प्रमाण नहीं मिलते, या कह लीजिए कि उल्लेख नहीं मिलते, या दुनिया के दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती हैं। अमेरिका में जरूर है इस तरह की याचिकाओं का विचार, वहां पर जन्मा था, जिसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं, सामाजिक कार्यवाही याचिका कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा संबंधित है। भारत में इसे लागू कराने का श्रेय, लाने का श्रेय जस्टिस पी एन भगवती को जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस पी एन भगवती। अब आप देखिए कि इसको थोड़ा सा आप यहां और जान लीजिए कि जो जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं फ्रेंड्स, याद रखिए कि वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, वो या तो केंद्र सरकार के विरुद्ध होगी, या राज्य सरकार के विरुद्ध होगी, या किसी संस्था के विरुद्ध होगी जो कंपनी वगैरह हो सकती हैं, या इनके इन सबको मिला जुला करके होगी। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी को मुझसे कोई परेशानी हो रही है, जैसे मैं अपने घर का कचरा सामने वाले के दरवाजे पर फेंक देता हूं, ढेर लगा देता हूं, तो मान लीजिए चलिए उससे प्रदूषण हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो अब चूंकि व्यक्तिगत मामला है, व्यक्ति से उसको परेशानी हो रही, तो वो जनहित याचिका में नहीं आएगा, वो तो फिर व्यक्तिगत मामला हो गया। जो जनहित याचिका है वो सार्वजनिक हित के साथ ही साथ जो सार्वजनिक हित बाधित करने वाली जो एजेंसी है, वो या तो केंद्र सरकार होगी, या राज्य सरकार होगी, या संस्थाएं होंगी, या इन सबका मिला जुला रूप होगा, यानी कि निजी पक्ष के विरुद्ध यह याचिका दायर नहीं की जाती है। यह भी आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका जो इतिहास रहा है, इनफैक्ट आई थोड़ा सा देखें कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। सच पूछे तो 1975 जो इमरजेंसी का पीरियड है, वो कई मायनों में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का बड़ा एक मोड़ वाला समय रहा, यू टर्न, मतलब बहुत सी वहां से नई चीजों की शुरुआत हुई, क्योंकि जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी उसने लोगों को बहुत ज्यादा चौकन्ना बना दिया। चौकन्ना इस मायने में कि क्या इस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, क्या इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया जा सकता है, क्या इस तरह से संस्थाओं पर अधिकार जमाया जा सकता है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही व्यवस्था होने लगी। इससे पहले भी मामला थोड़ा थोड़ा चल रहा था, मतलब एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर का जो संकट है, जो त्रिकोणीय संघर्ष है, देखिए बहुत समय से ये चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जिसे आज हम एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दे देते हैं, तो ये वर्तमान में आते आते थोड़ा सा ज्यादा इसने ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है, अदरवाइज ये शुरू से भी थी। एक केस है, मुझे लगता है कि यह भी आपको याद रखना चाहिए रेफरेंस के रूप में मित्रों, ये केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, 1973 का ये केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी माइलस्टोन है जुडिशरी के फील्ड में भी, जुडिशरी के इतिहास में भी, और जनहित याचिकाओं की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ में भी। इस केस की सुनवाई के में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो निर्णय दिया था वो ये दिया था कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना में बदलाव कर सके, जिसे मौलिक संरचना को आप कहिए कि संविधान की आत्मा में बदलाव कर सके, संविधान की आत्मा को बदल सके, यानी कि उसकी जो मूलभूत जो बनावट है उसमें परिवर्तन कर सके, राइट, मतलब आप दूसरे संशोधन लाइए। देखिए 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई संशोधन मतलब बाद में जब आ गया है तो ऐसा नहीं है जो संविधान के आत्मा को बदल सके, यानी कि उसके चरित्र में बदलाव ला सके। तो यहां पर लेजिस्लेचर पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा। अब आप देखिए कि जुडिशियली रिव्यू मतलब संविधान के तहत ही न्यायालय को यदि यह लगता है कि कोई जो कानून है या यूं कह लीजिए कि कोई मामला है ऐसा है जो संविधान की आत्मा का उल्लंघन कर रहा है या न्यायालय को ठीक नहीं लगता है, लेकिन मूलभूत चरित्र को देख करके न्यायालय को ठीक नहीं लगेगा, ये नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई भी निर्णय ले लेगा, तो वह उसका पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है और फिर वो आदेश दे सकता है, कह सकता है, उसे खारिज कर सकता है, संसद के बनाए हुए कानून को वो खारिज कर सकता है। आप देखिए कि जो जुडिशियल एकेडमी बनाने की बात हुई, अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाने की बात हुई, सारी आयोग बनाने की, कमीशन बनाने की बात हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको बकायदे पार्लियामेंट ने पारित किया था। तो सीधी सी बात है कि ये जो अधिकार है जो न्यायालय को मिला हुआ है ये संविधान के द्वारा मिला हुआ है और इसका बहुत मूलभूत आत्मा है हमारे संविधान की, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर पर डिपेंड करता है कि तीनों के जो अधिकार हैं जो बिल्कुल अलग अलग है, ये तीन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर इसमें से लेजिस्लेचर को सबसे ऊपर रख दिया जाएगा तो जुडिशियर और एग्जीक्यूटिव पर तो ये हावी हो जाएगा, फिर तो कुछ भी राजनीति तो फिर कुछ भी कर सकती है। तो इस तरीके से जो संविधान की मूलभूत जो चरित्र के तत्व हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और सच पूछे तो इसके बाद से ही जुडिशरी थोड़ी सी प्रोमिनेंट हुई, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, समझते हैं, वहां से उसे शक्ति मिलनी शुरू हुई। और सच पूछे तो वहीं से फिर पीएन भगवती ने एक विचार दिया, वो दिया जनहित याचिकाओं का, जनहित याचिकाओं का। और पहली बार फिर 39A जो आर्टिकल होता है 39A, उसके तहत PIL जो दायर की गई थी उसे स्वीकार किया गया। मित्रों ये सिंपल सी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं आपने महसूस किया होगा कि उनका ज्यादातर संबंध फंडामेंटल राइट्स से होता है, कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। राइट, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो आपको चाहिए कि इस फाउंडेशन जो मैंने आपको एक नींव बताई है, इस नींव के ऊपर अब आप इस टॉपिक की बहुत अच्छी तैयारी करें और इसे लगातार करेंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते चले जाएं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करेंट अफेयर्स पर बेस्ड ही होगा। राइट फ्रेंड्स, तो अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।